नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपकी साथी मोहना। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम 18 या 21 राय आपकी लेकर। साथियों, पिछली कड़ी में आपने सुना हमारी कानूनी विशेषज्ञ जैस्मिन लवली जॉर्ज, जो कर्नाटका में स्थित हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव नामक संस्था से जुड़कर पिछले 10 सालों से बिहार और कर्नाटका के लड़कियों की हित के लिए काम करती आई हैं। जैस्मिन ने हमारे कई सवालों के जवाबों से हमें रूबरू करवाया, तो आइए उनसे हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं।
21 की उम्र में अगर शादी होती है, अगर वो लड़की एम्पावर्ड होगी, मेरा कहने मतलब है अगर वो 21, 22, 23, 24 की उम्र के बाद अगर वो शादी करती है पढ़ लिख के कुछ नौकरी करके, तो क्या कोई असर पड़ेगा उसकी जिंदगी के तौर तरीकों में?
तो एक तो लड़की उसकी उम्र का आई थिंक सो जितने हम लड़कियों को हक देंगे और जगह देंगे सोचने का, लड़कियों को हम जितने साधन देंगे, जितनी किताबें देंगे, सब लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सबके घर वालों के पास उतने पैसे नहीं होते कि एक्चुअली स्कूल भेज पाए या कॉलेज भेज पाए। बट हाँ, अगर लड़की को सोच अगर चांस मिले खुद की जिंदगी के डिसीजंस बनाने का, वो बहुत जरूरी है कि वो अगर वो पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ाई करे, अगर वो काम करना चाहती है, क्योंकि हर एक चीज एक एक्सपीरियंस है। जितना इंसान एक्सपीरियंस लेगा, तजुर्बा लेगा, उतना वो अपने बारे में सीखेगा। कई लड़कियां होती जिनको शादी नहीं करनी थी, शादी करनी थी बट उनको जबरदस्ती के कहते हैं पढ़ाई करवाई गई। लड़कियों को ऑप्शन देना बहुत जरूरी है। ये ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों के साथ अक्सर तुम अगले 3-4 साल में जल्दी से सोचो और कुछ करो, लड़के कभी कभी 10 साल लगा देते हैं सोचने में जिंदगी में क्या करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर शादी हो गई जिंदगी बंद। ये मतलब ये एक और चीज है जो हमें सच में समझना होगा कि कई सारी औरतें हैं जिन्हें शादी करके बच्चे करके भी काम किया है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये कि शादी और पढ़ाई एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े हो, ये सारी चीजें स्वतंत्रता, इतनी सिंपल चीज स्वतंत्रता, बस खाली बैठना नहीं है, ये सोच में स्वतंत्रता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि आपको क्या लगता है कि अगर हम लड़कियों की शादी एक सही उम्र पे, मैं यहाँ पे ना 18 बोलूंगी ना 21 बोलूंगी, पर अगर एक सही उम्र पे हम लड़कियों की शादी कराते हैं, तो क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि दहेज उत्पीड़न जैसे जो मामले हैं वो कुछ हद तक कम होंगे?
ये हाँ, तो मैं, और वैसे मैं केरला से आती हूँ, और मैं ये क्यों केरला का एग्जांपल देना चाहती हूँ इसलिए है कि केरला सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है पूरे देश में। इसके बावजूद केरला में सबसे ज्यादा दहेज मांगा जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछले 70 सालों में हमारा शिक्षा जो इतना बढ़ गया है, सबके पास इतनी अच्छी जॉब्स हैं, सब इतना अच्छा कमा रहे हैं कि दहेज की ये प्रथा बंद हो गई है, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। दहेज बढ़ता जा रहा है, उल्टा कई जगहों में तो दहेज का की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, कहीं रुक ही नहीं रहा। थोड़े बहुत हमारे पुराने रीति विचार, थोड़े बहुत लगता है कि घर वालों को लगता है कि ये हमारा तरीका का प्यार है, और काफी सारी बुरी प्रथाएं भी हैं। ऐसा कुछ ये कहीं प्रूफ नहीं है, और केरला बहुत अच्छा उदाहरण है इस बारे में कि जितनी आप पढ़ाई करोगे उतने आप उन्नति करोगे और उतना ये प्रथा बंद होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता उम्र उससे भी फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप लड़कियों को और लड़कों सभी को ये समझ दो कि इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। ये जो दहेज की जो प्रथा है, जहाँ पे पैसों का ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी का जो आदान प्रदान हो रहा है, इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा, उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कैसे घर वालों पे, समाज में, कई कम्युनिटीज में बहुत प्रेशर है। तो कैसे हम इज्जत को दहेज से अलग करें, कैसे हम अपनी उन्नति को दहेज से अलग करें, ये बहुत ही गहरा काम है। एजुकेशन से, सोच से, और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन से कोई फायदा नहीं है। मैं इसमें बोलती हूँ कि जो हमारे जो बूढ़े हैं घर के हैं उनसे बात करना, जो पंचायत है, जो एक्चुअली पावर होल्ड करते हैं ना हमारे पंचायत समय, उनको हमारे साथ लाना ज्यादा जरूरी है।
आखिरी मेरा सवाल है आपसे, जो कि बहुत जरूरी है हमारी ग्रामीण जो ऑडियंस है उनके लिए, सुचित सहमति की जो हमने बात की थी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वो होता क्या है?
बिल्कुल, नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं तो कहूँगी सिर्फ ग्रामीण के लिए नहीं, इवन शहरों में अक्सर देखा है कि ज्यादातर लड़कियां छोटी सी सहमति, छोटी सी स्वतंत्रता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब अगर निजी मामले में, जैसे शादी हो या मोहब्बत हो या किसी का संबंध बनाना हो, एक तो चीज होती है अगर आगे वाला सच में आपके बारे में चिंता करता है, आपके बारे में एक्चुअली उसको, उस इंसान को आप मैटर करते हो, तो वो आपसे सहमति लेगा, और सहमति लेगा या लेगी, सहमति देना भी एक चीज है। तो अगर आपसे किसी ने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे सहमति लेना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे करोगे, आपको भी सहमति देना चाहिए, देना आना होगा कि कैसे मैं सहमति दूँ, और उसके लिए सूचित सहमति बहुत जरूरी है। सूचित सहमति का मतलब बहुत सिंपल है कि आपको अपने सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, कि सारे मेरे पास क्या क्या है, अगर मैंने हाँ की तो क्या क्या होगा, मैंने ना की तो क्या क्या होगा, अगर मैंने जवाब नहीं दिया या कुछ भी नहीं किया तो क्या क्या। हम लड़कियों को पूरा हक है, अधिकार है कि हमें अपने सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, तभी मैं एक सूचित तरीके से अच्छी तरह जान के पूरे होश हवास में मैं एक डिसीजन या निर्णय ले पाऊँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सहमति सिर्फ हाँ या ना हो बल्कि सूचित हो, मतलब बिल्कुल समझ के अंडरस्टैंड करके प्रश्न पूछ के, अच्छा तो इसके बाद क्या होगा और आपका हक है।
जैस्मिन, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और कई बातों को जानने का मौका भी मिला। आपको कैसी लगी हमारी कानूनी विशेषज्ञ जैस्मिन लवली जॉर्ज की बातें? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक आप हमें बताएं कि क्या आपके पास इस विषय पर हमारे लिए कोई सवाल है। आपके हिसाब से अगर लड़कियों को अपनी शादी का फैसला लेने का बराबर अधिकार मिले तो उससे क्या बदलाव आ सकता है? अपनी बात हम तक जरूर पहुँचाएं अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।